कुछ देर बाद या शायद बहुत समय बाद, उसे खुद नहीं पता, एक अलग ही दुनिया में एक 3 साल के बच्चे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहले तो उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया, सब कुछ धुंधला था, जैसे किसी ने उसकी आंखों के सामने एक मोटा पर्दा डाल दिया हो। रोशनी थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी वह जानता था। वह तीखी नहीं थी, नहीं चुभने वाली। वह नर्म थी, गर्म थी और अजीब तरह से सुकून देने वाली। उसने पलकों को झपकाने की कोशिश की। ये हरकत अपने आप में उसे हैरान कर गई। मैं झपका पा रहा हूँ, ये सोच उसके भीतर एक हल्की सी लहर की तरह उठी। पिछली याद में तो उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका था, वहां हर सांस एक जंग थी, हर हरकत एक सजा। लेकिन अब उसके दिमाग का आदेश उसके शरीर तक पहुंच रहा था। जब धुंध थोड़ी कम हुई, तब उसने चारों तरफ देखना शुरू किया। वह किसी अस्पताल में नहीं था, ये कमरा बड़ा था, बहुत बड़ा। छत ऊंची थी, इतनी ऊंची कि उसे देखकर एक पल को उसका सिर चकरा गया। दीवारें साफ थीं, चमकदार थीं और उन पर बने हल्के हल्के डिजाइन किसी ऐसी जगह की याद दिला रहे थे जहां पैसे की कमी नहीं होती। बिस्तर, वह जिस बिस्तर पर लेटा था वह नर्म था, जरूरत से ज्यादा नर्म। इतना नर्म कि उसका शरीर उसमें धंसा गया था। उसका दिमाग तुरंत तुलना करने लगा। अस्पताल का बिस्तर इतना कठोर था कि हड्डियां दर्द करने लगती थीं। लेकिन यह तो किसी अमीर इंसान का कमरा लग रहा था। उसने हल्का सा हिलने की कोशिश की, तुरंत उसके पूरे शरीर में दर्द की एक लहर दौड़ गई। वह दर्द जाना पहचाना नहीं था, लेकिन पूरी तरह नया भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर को बार बार कुचल दिया हो, जैसे कोई भारी चीज उसके ऊपर से गुजर गई हो। एक पल के लिए उसके दिमाग में एक अजीब सी तुलना आई, जैसे कोई ट्रक उसे कई बार रौंद गया हो। उसके चेहरे पर हल्की सी सिकुड़न आई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह दर्द उसे तोड़ नहीं रहा था। पहले वाला दर्द अलग था, वह दर्द धीरे धीरे इंसान को खत्म करता था। ये दर्द सहा जा सकता था, ये अलग है। उसने अपने हाथ को देखने की कोशिश की और यहीं पर उसका दिमाग सच में रुक गया। हाथ, वे उसके हाथ नहीं थे, वे बहुत छोटे थे, मुलायम थे। उन पर न तो वे नसें थी, न ही वह कमजोरी जो उसने आखिरी दिनों में देखी थी। उसने उंगलियों को हिलाया, उंगलियां हिल गईं, उसकी सांस एक पल के लिए अटक गई। ये बच्चा है, यह एहसास धीरे धीरे नहीं आया, ये सीधा उसके सिर पर गिरा, किसी हथौड़े की तरह। उसने अपने शरीर को महसूस किया, छोटा धड़, हल्की टांगें, कमजोर लेकिन जीवित। 3 साल, शायद उससे भी कम। उसका दिमाग उस सच को मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन शरीर हर पल उसे याद दिला रहा था कि यह सच है। वह आदमी नहीं था जो एक अंधेरे अस्पताल में मर रहा था, वह फिर से जी रहा था। कुछ पल वह बस वहीं पड़ा रहा, न हिलते हुए, न कुछ कहते हुए। उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था, खुशी नहीं, डर भी नहीं, बस उलझन। मैं मरा था तो फिर यह क्या है? उसके दिमाग के किसी कोने में नाम उभरा, अभय। नाम पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन एहसास पक्का था, जैसे कोई चीज धुंध में छिपी हो लेकिन फिर भी अपनी मौजूदगी जताती हो। अभय, उसने ये नाम अपने भीतर दोहराया, आवाज बाहर नहीं निकली, शायद निकल भी नहीं सकती थी, ये गला भी नया था। उसने महसूस किया कि कुछ देर आराम करने के बाद वह शायद बैठ भी सकता है, चल भी सकता है। यह एहसास उसे अजीब तरह से भारी लगा, क्योंकि पहली बार मरने के बाद उसके सामने फिर से आगे बढ़ने का रास्ता था, लेकिन वह रास्ता कहाँ जाता है, ये सवाल अभी अधूरा था। अंडस्को, दरवाजे के बाहर अचानक हलचल हुई। अभय की नज़र उस दिशा में गई जहां से हल्की सी भागती हुई परछाई दिखाई दी। एक छोटी सी लड़की जिसने साधारण लेकिन साफ सुथरी नौकरानी की पोशाक पहन रखी थी, गलियारे से तेजी से दौड़ती जा रही थी। उसकी चाल में हड़बड़ाहट साफ झलक रही थी, जैसे वह किसी बहुत बड़ी बात की खबर देने जा रही हो। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और उसकी आवाज टूटती सी निकल रही थी। मालकिन, मालकिन, उसकी पुकार पूरे गलियारे में गूंज रही थी। अभय ने उसे देखा लेकिन समझ नहीं पाया, उस शब्द का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। मालकिन, उसका दिमाग अभी भी इस नई जगह को समझने में उलझा हुआ था। वह जानता था कि वह किसी अमीर घर में है, किसी सुरक्षित जगह पर, लेकिन यह सब उसके लिए बस तस्वीरों की तरह था, बिना आवाज, बिना अर्थ। नौकरानी की घबराहट उसके लिए एक और अजनबी चीज थी। वह क्यों भाग रही है और किसके लिए, ये सवाल उसके मन में उठे, लेकिन उनके जवाब तक पहुंचने से पहले ही वह फिर से अपने ख्यालों में डूब गया। उसका ध्यान अपने छोटे से शरीर पर चला गया, अपने हाथों पर, उस हल्के से दर्द पर जो अब भी उसके अंदर कहीं कहीं चुभ रहा था। वह सोचने लगा, क्या ये सब सच है, क्या ये सिर्फ मरते हुए दिमाग की आखिरी कल्पना तो नहीं। वह इन सवालों में इतना खो गया था कि उसे दरवाजा खुलने की आवाज तक का ठीक से एहसास नहीं हुआ। बस अचानक कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। अभय की नजर अपने आप दरवाजे की तरफ उठी, वहां 2 लोग खड़े थे, एक सुंदर औरत और उसके साथ एक आदमी। औरत का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह रोते रोते यहां तक आए हो। उसकी सांसें तेज थीं और उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने जैसे ही अभय को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, डर, राहत और दर्द का मिला जुला रूप। आदमी उसके पीछे खड़ा था, उसका चेहरा सख्त था लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। वह मजबूत दिखता था लेकिन उस मजबूती के नीचे भी चिंता साफ झलक रही थी। उसके कंधे तने हुए थे, जैसे वह खुद को संभाले हुए हो। अभय ने दोनों को देखा। उसके दिल में कोई पहचान नहीं जगी, कोई याद नहीं, कोई अपनापन नहीं, बस एक सवाल, ये लोग कौन हैं? वह औरत एक पल भी और नहीं रुकी। जैसे ही उसकी नज़र पूरी तरह अभय पर पड़ी, वह तेजी से आगे बढ़ी और बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी बाहों में भर लिया। अभय का छोटा सा शरीर अचानक एक गर्म, कांपते हुए आलिंगन में फंस गया। वह चौंक गया, उसका शरीर सख्त हो गया, जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो कि उसे क्या करना चाहिए। ये स्पर्श उसके लिए नया था, इतना पास, इतना गहरा और इतना भावनाओं से भरा हुआ। औरत रो रही थी, उसकी सिसकियां अभय के कानों के पास साफ सुनाई दे रही थीं। उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी, जैसे वह डर रही हो कि अगर उसने ढीला किया तो वह फिर से उसे खो देगी। बेटा, उसकी आवाज़ टूट रही थी, बेटा, अब माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। अभय की आंखें खुली की खुली रह गईं। माँ, वह शब्द उसके दिमाग से टकराया। औरत रोते रोते बोल रही थी, उसके शब्द बिखरे हुए थे लेकिन भावनाएं बेहद साफ थीं। मुझे माफ़ कर दो, माँ से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाए, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। उसकी हथेलियां अभय की पीठ पर सहल रही थीं। उसकी ठुड्डी उसके सिर से टिकी हुई थी और उसके आंसू उसके छोटे से कपड़ों को भिगो रहे थे। अभय कुछ नहीं कर पाया, न वह उसे वापस पकड़ सका, न वह खुद को अलग कर पाया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, ये औरत मेरी माँ है, या इस शरीर की। उसके भीतर कहीं गहरी उलझन पैदा हो गई। उसने प्यार तो देखा था, लेकिन ये प्यार उसके लिए नहीं था, यह उस बच्चे के लिए था जिसका शरीर वह पहन रहा था। आदमी चुपचाप वहीं खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पत्नी और बच्चे को देखता रहा, जैसे ये पल उसके लिए भी आसान नहीं था। कमरे में कुछ देर तक सिर्फ औरत की सिसकियां गूंजती रहीं। धीरे धीरे उसका रोना कम होने लगा, लेकिन कमरे में एक भारी सी चुप्पी फैल गई। अभय उस आलिंगन में ही था, जिंदा, सुरक्षित, प्यार से घिरा हुआ, फिर भी अकेला। अंडस्को उन दोनों के साथ एक और व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। उसकी चाल धीमी थी लेकिन हर कदम में अनुभव झलक रहा था। वह साधारण कपड़ों में था मगर उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी, ऐसी गंभीरता जो सिर्फ वही लोग रखते हैं जिन्होंने जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देखा हो। उसके बालों में सफेदी थी और आंखों में एक अजीब सी थकान, मानो वह पहले ही बहुत कुछ समझ चुका हो। वह वैद्य था। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, माहौल अपने आप बदल गया। जहां अभी तक सिर्फ भावनाएं थीं, वहां अब निर्णय और भाग्य की गंध घुलने लगी। वह बिना किसी औपचारिकता के सीधे अभय के पास आया और बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसके हाथ स्थिर थे, न जरा सी घबराहट, न जल्दबाजी। उसने अभय की कलाई को हल्के से थामा और उसकी नाड़ी देखने लगा। कमरे में पूरी तरह चुप्पी छा गई, माँ की सिसकियां भी जैसे वहीं रुक गई हों। पिता की आंखें वैद्य के हर छोटे से हाव भाव पर टिकी हुई थीं। अभय सब महसूस कर रहा था, कलाई पर छूती उंगलियां, हाथ की हल्की गर्माहट और उस स्पर्श के साथ एक अजीब सी अनुभूति, जैसे कोई उसके भीतर झांक रहा हो। वैद्य की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं, उसकी सांसें गहरी हो गईं। फिर उसने दूसरी हथेली अभय के सीने के पास रखी, मानो वह सिर्फ शरीर नहीं, उसके भीतर की किसी और चीज को भी टटोल रहा हो। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। महाराज, उसने शांत आवाज में कहा, युवराज अब स्थिर हैं, उनकी जान को तत्काल कोई खतरा नहीं है। ये सुनते ही माँ के चेहरे पर एक पल के लिए राहत उतर आई। उसने जैसे भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया, लेकिन वह पल बहुत छोटा था, क्योंकि वैद्य की आवाज वहीं नहीं रुकी, पर वह शब्द जैसे कमरे में गिरा नहीं बल्कि टकराया। पिता की आंखों में तुरंत गुस्से की चमक आ गई, उन्होंने वैद्य की ओर तेज नजर डाली। पर क्या, उनकी आवाज में कोई अनुरोध नहीं था, वह आदेश था। वैद्य का गला सूख गया, उसने हल्का सा सिर झुकाया, फिर डरते हुए बोला, महाराज, युवराज का तंत्र कोर तोड़ दिया गया है। उस पल कमरे में जो सन्नाटा फैला, वह किसी चीख से ज्यादा भारी था। पिता का चेहरा सख्त हो गया, उनकी भौहें तंग गईं। बकवास, उन्होंने गुस्से में कहा, वैद्य, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। वे एक कदम आगे बढ़े, अगर तंत्र कोर टूट गया होता, उनकी आवाज और कठोर हो गई, तो इस बच्चे की सांसें अभी तक चल ही नहीं रही होती। उनके शब्दों में तर्क था, इस दुनिया का नियम था, तंत्र कोर ही जीवन का आधार था, उसके बिना जीवन असंभव। लेकिन ये सुनते ही माँ का बांध टूट गया, वह और जोर से रोने लगी। उसने अभय को फिर से कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे इस सच से बचा लेना चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा, उसकी आवाज भर्रा गई। वैद्य ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। महाराज, उसने धीरे से कहा, ये बात वैसी है भी और नहीं भी। पिता की आंखें और सख्त हो गईं। पहेलियां मत बुझाओ, उन्होंने गुस्से से कहा, पूरी बात साफ साफ बताओ। वैद्य ने गहरी सांस ली। युवराज पर जिन लोगों ने हमला किया, उसने कहना शुरू किया, उन्होंने सिर्फ हत्या का प्रयास नहीं किया, उसके शब्द कमरे में भारी होते चले गए, उन्होंने जहर का भी इस्तेमाल किया था। ये सुनते ही पिता का चेहरा बदल गया। यह अब सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक साजिश थी, वैद्य आगे बोला, उसकी आवाज कांप रही थी। वह जहर शरीर को नहीं, तंत्र कोर को निशाना बनाता है। उसने कोर को पूरी तरह नष्ट नहीं किया, लेकिन उसे तोड़ दिया, अधूरा बना दिया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। अभय ये सब सुन रहा था। शब्द समझ में आ रहे थे या नहीं, यह अलग बात थी, लेकिन एक बात साफ थी, ये जीवन सामान्य नहीं होने वाला था। वैद्य ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी, जैसे वह जो कहने जा रहा है उसका बोझ खुद पर लेने की कोशिश कर रहा हो। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उस चुप्पी को महसूस कर सकता था। ये चुप्पी साधारण नहीं थी, यह आने वाले सच की आहट थी। महाराज, वैद्य ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, ये जहर बहुत ही दुर्लभ है। उसने ये शब्द ऐसे कहे जैसे हर अक्षर का अपना वजन हो। इतना दुर्लभ, वह आगे बोला, कि सामान्य तांत्रिक या साधारण वैद्य इसके बारे में सुनते तक नहीं। ये लगभग ना के बराबर पाया जाता है। इसे तैयार करने की विधि भी हर किसी को ज्ञात नहीं होती। राजा की आंखें सिकुड़ गईं। यह कोई अच्छी खबर नहीं थी। वैद्य ने गहरी सांस ली और आगे बोला, ये जहर शरीर में आम विषों की तरह नहीं फैलता। ये खून को नहीं जलाता, न ही अंगों को सड़ाता है। इसका लक्ष्य केवल एक होता है, तंत्र कोर। ये सुनते ही कमरे का तापमान जैसे गिर गया। ये जहर, वैद्य ने समझाते हुए कहा, युवराज के तंत्र कोर के चारों ओर फैल चुका है। ठीक वैसे ही जैसे कोई अदृश्य दीवार कोर को चारों तरफ से घेर ले। उसने अपनी उंगलियों से हवा में एक गोल आकृति बनाई। इस घेरे के बनने के बाद तंत्र कोर तक किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं पहुंच पाती, न बाहरी ऊर्जा, न ही शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाली। माँ की आंखें फैल गईं, उसके होंठ कांपने लगे। तो इसका मतलब? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वह जवाब सुनना ही नहीं चाहती हो। वैद्य ने सिर झुका लिया। इसका मतलब यह है, महारानी, उसने कहा, कि युवराज तंत्रिका साधना नहीं कर पाएंगे। ये शब्द कमरे में गूंजने लगे। तंत्रिका साधना, एक राजकुमार के लिए ये केवल शक्ति का मार्ग नहीं था, यह उसका भविष्य था, उसकी पहचान थी, उसकी सुरक्षा थी। राजा कुछ नहीं बोले। उनका गुस्सा अब शांत हो चुका था, लेकिन उसकी जगह एक और भी खतरनाक चीज ने ले ली थी, ठंडी समझ। यदि युवराज साधना नहीं कर पाएगा तो उत्तराधिकार कमजोर होगा, और कमजोर उत्तराधिकारी राज्य के लिए खतरा। वैद्य ने बात जारी रखी, ये स्थिति मृत्यु से अलग है महाराज। शरीर जीवित रहेगा, सांसें चलती रहेंगी, लेकिन साधना का मार्ग बंद रहेगा। माँ अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने अभय को और कसकर पकड़ लिया। नहीं मेरा बेटा, उसकी आवाज में अब चीख नहीं थी, बस खालीपन था। राजा ने आखिरकार बोलना चुना, तुम ये सब इतनी निश्चितता से कैसे कह सकते हो? उनकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ संदेह और सावधानी। वैद्य ने सिर उठाया। महाराज, उसने कहा, मैं इस जहर को इसलिए पहचान पाया क्योंकि यह आपके शत्रु राज्य का सबसे खतरनाक जहर है। ये सुनते ही राजा की आंखों में एक अलग ही चमक आई। शत्रु राज्य, वह नाम लिए बिना ही समझ गए, वह राज्य जो खुले युद्ध से ज्यादा छाया में वार करता था, जहां तलवार से पहले जहर चलाया जाता था, जहां दुश्मन को मारने से ज्यादा उसे तोड़ने पर विश्वास किया जाता था। ये जहर, वैद्य ने कहा, उसी राज्य के शाही तांत्रिकों द्वारा विकसित किया गया था। इसे खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए बनाया गया था जिनका तंत्र कोर मजबूत होता है। उसने अभय की ओर देखा, ऐसे युवराजों के लिए। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अभय ये सब सुन रहा था, शब्द पूरी तरह समझ में नहीं आ रहे थे। तंत्र कोर, साधना, जहर, लेकिन एक भावना साफ थी, कुछ उससे छीना गया था, कुछ ऐसा जो उसे कभी मिला ही नहीं, लेकिन फिर भी उसका होना चाहिए था। उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी हल्की सी भींच ली। वह भी बच्चा था, कमजोर था, बिस्तर पर पड़ा हुआ, लेकिन उसके भीतर कहीं बहुत गहराई में कुछ चुपचाप बदलने लगा था। अभय की आंखें खुली हुई थीं, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत गहरे सपने के भीतर फंसा हो। आवाजें उसके कानों तक आ रही थीं, स्पष्ट, साफ, पर समझ से परे। कोई युवराज कह रहा था, कोई तंत्र कोर की बात कर रहा था, कोई जहर, कोई शत्रु राज्य। अभय के मन में बस एक ही विचार उठ रहा था, ये सब क्या है, ये लोग कौन हैं, और ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे मैं कोई और हूं। उसने बोलने की कोशिश की, गला हिला, होंठ कांपे, पर आवाज बाहर नहीं आ सकी। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा। तभी अचानक किसी ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया, बहुत कसकर, इतना कसकर कि उसकी सांसें रुकने लगी। अभय चौंक गया। एक औरत जिसकी आंखें लाल थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ और हाथ कांप रहे थे, वह औरत उसे सीने से लगाए रो रही थी। बेटा मेरा अभय, उसकी आवाज टूटी हुई थी। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अभय का शरीर सख्त हो गया। बेटा मेरा, औरत ने उसका सिर अपने कंधे से लगा लिया। तुम भले ही साधना न कर सको, उसने कांपती आवाज में कहा, पर माँ तुम्हारी हर तकलीफ खुद सह लेगी। माँ, अभय का दिल जोर से धड़का। उसने धीरे से उस औरत की तरफ देखा। चेहरे पर कोई पहचान नहीं, कोई याद नहीं, कोई जुड़ाव नहीं, सिर्फ एक अजनबी। उसने बहुत मुश्किल से होंठ खोले। आप, आवाज कमजोर थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी, आप कौन हैं? ये शब्द जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर टूट गए। औरत की पकड़ ढीली पड़ गई, उसकी सांस अटक गई। वह आदमी जो अभी तक गुस्से में वैद्य से बात कर रहा था अचानक मुड़ गया। उसकी आंखें अभय पर टिक गईं। पहली बार उस चेहरे से गुस्सा गायब था, वहां सिर्फ डर था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अभय बेटा, उसकी आवाज भारी हो गई थी, क्या तुम अपने पापा को नहीं पहचानते? कमरे में सन्नाटा छा गया। अभय ने उस आदमी को देखा, ऊंचा कद, राजसी वस्त्र, पर उसके लिए वह भी एक अजनबी था। उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई, कोई याद नहीं उभरी, कोई तस्वीर नहीं बनी। धीरे से, बहुत धीरे से, अभय ने अपना सिर नामे हिला दिया। बस इतना ही, कोई शब्द नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ एक छोटा सा इशारा, और उसी पल वह औरत जमीन पर बैठ गई। उसकी हालत जो पहले ही खराब थी, अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। नहीं, उसके मुंह से बस यही निकला। वह आदमी वहीं खड़ा रह गया। राजा, पिता, और अब एक ऐसा इंसान जिसे उसका ही बेटा पहचान नहीं पा रहा था। अभय सब देख रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब का उससे क्या रिश्ता है। उसके लिए ये सब अब भी किसी अजीब डरावने सपने जैसा ही था, और उसे नहीं पता था ये सपना नहीं है, यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है। अंडस्को, वह आदमी भारी आवाज में वैद्य से पूछता है, और ये क्या है वैद्य? वैद्य ने एक पल के लिए अभय की तरफ देखा, उसके चेहरे पर दया और डर दोनों साफ झलक रहे थे। महाराज, वह धीरे से बोला, तंत्र को और उसकी व्यक्ति का संबंध टूट जाने से ऐसा होना आम बात है। स्मृति का धुंधला होना, अपनों को न पहचान पाना, ये सब अस्थाई है। राजा की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आई, तो वह ठीक हो जाएगा। वैद्य ने सिर झुका लिया, यादें तो कुछ समय में लौट सकती हैं, पर उसकी आवाज रुक गई। राजा का चेहरा फिर कठोर हो गया, पर क्या? पर युवराज अब कभी साधना नहीं कर पाएंगे। ये शब्द कमरे में किसी भारी हथौड़े की तरह गिरे। रानी की सिसकियां फिर तेज हो गईं, राजा की मुठियां भींच गईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। दोनों आपस में धीमी आवाज में बात करने लगे, राज्य, शत्रु, भविष्य, उत्तराधिकारी। लेकिन अभय, अभय ये सब सुन रहा था, शब्द उसके कानों में जा रहे थे, पर उसका दिमाग किसी और ही दिशा में भाग चुका था। तंत्र को, साधना, युवराज, अचानक उसके दिमाग में एक नाम बिजली की तरह कौंधा। अभय, उसका दिल जोर से धड़क उठा। रुको, ये नाम, उसकी आंखें फैल गईं। उसे याद आया, अपने पिछले जीवन का एक हिस्सा, एक तांत्रिक गेम, एक डार्क फैंटेसी वर्ल्ड, और उस गेम में सबसे खतरनाक खलनायक का नाम भी अभय था। अभय की सांस अटक गई, उसका गला सूखने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यादें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। वह खलनायक जिसका तंत्र को सामान्य नहीं था, जिसे साधारण साधना से शक्ति नहीं मिलती थी, उसकी शक्ति बढ़ती थी, बलि से नरबली। यादें अब साफ होने लगी। खून से सना हुआ एक विशाल यज्ञ स्थल, आग की लपटों में चीखते लोग, आसमान तक उठती काली ऊर्जा, एक राज्य, पूरा का पूरा राज्य, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, सबकी बलि, सिर्फ शक्ति पाने के लिए, सिर्फ और मजबूत बनने के लिए। वह खलनायक सभी खलनायकों में सबसे खतरनाक था, सबसे निर्दयी, सबसे ताकतवर। और अब अगर मैं वही अभय हूं, अभय का शरीर कांपने लगा, तो मेरा अंत है। उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा, सीने में तेज दर्द उठने लगा, नजर धुंधली होने लगी। वह कुछ कहना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, सच बताना चाहता था, पर शब्द बाहर नहीं आए। उसने बस इतना देखा, उसकी तरफ भागते हुए दो चेहरे, एक औरत जिसकी आंखों में सिर्फ डर और ममता थी, एक आदमी जिसका चेहरा मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था, पर आंखों में टूटन साफ थी। उस पल खलनायक की यादों के बीच अभय ने उन्हें देखा, अपने इस जन्म के माता पिता, और फिर अंधेरा। उसकी चेतना टूट गई, शरीर बिस्तर पर निढाल पड़ गया, कमरे में अफरा तफरी मच गई। अभय, युवराज, पर अभय अब कुछ नहीं सुन रहा था। उसका मन एक ही सवाल में डूब चुका था, अगर मैं वही खलनायक हूं तो क्या इस बार भी मेरा रास्ता खून से ही होकर जाएगा? क्या मुझे नरसिन्हा करना होगा? क्या यही मेरी नियति है?